समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो मनोज, गुड मॉर्निंग टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू अस दिस संडे मॉर्निंग। स्टे विद अस फ्रेंड्स, एंजॉय अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ योर फेवरेट मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो मनोज, फॉर स्टार्टर्स लेट्स गिव देम सम न्यूज़ हेडलाइंस।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का विषय है बल्कि इन चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस में आयोजित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व में एक ऐसा स्थान मिला हुआ है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि चाहे देश हो या वैश्विक मंच हो, लोगों में भारत का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत 2014 से तेज विकास के पथ पर है। उन्होंने कहा कि मात्र एक दशक में भारत विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन वो 4थी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार के भय को आसान व्यापार करने के रूप में परिवर्तित कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत बनने की यात्रा में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखती है।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर मेट द नॉर्वेजियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द इनकमिंग चेयर ऑफ द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस येंस स्टोल्टनबर्ग इन म्यूनिक। They had a useful exchange of evolving global security architecture. Dr. Jayshankar also met Argentina's foreign and trade minister, Gerardo Vertain, on the sidelines of the conference. In a social media post, the external affairs minister said they discussed further the expansion in India-Argentina trade and investment. They also shared perspectives on global affairs. The external affairs minister also caught up with Denmark's foreign minister, Lars Rasmussen, and discussed the complex challenges of European security.
दिल्ली में कल देर शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इसमें 15 लोगों की मृत्यु हुई है और कई घायल हो गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि स्टेशन पर अचानक यात्रियों की भीड़ के बढ़ जाने के कारण ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्थिति नियंत्रण में है। श्री वैष्णव ने कहा कि भीड़ को हटाने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ के लिए तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाई गईं और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस घटना से व्यथित हैं और उनकी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना के संबंध में श्री वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घायलों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए अस्पताल का दौरा किया।
यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनाउंस्ड दैट यूरोप विल नॉट पार्टिसिपेट इन यूक्रेन्स पीस टॉक्स। Keith Kellogg, assistant to the U.S. President and Special Envoy for Russia and Ukraine, made this statement during the Global Security Conference in Munich, Germany, yesterday. Mr. Kellogg is on a European tour to further President Donald Trump's objective of securing peace in the region. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky called for a European army, arguing that the continent can no longer depend on U.S. protection and needs a strong military to earn respect from Washington. NATO Secretary General Mark Rutte has also urged Europeans to get their act together in supporting Ukraine. Moving to some sports news now. The Women's Premier League 2025. Delhi Capitals defeated Mumbai Indians by 2 wickets in a thrilling encounter at Kautambi Stadium in Vadodara last night. Mumbai Indians batting first after being put in were dismissed for 164 runs in 19.1 overs. For Mumbai, Nat Skeever Brun scored 80 runs off 59 balls, while captain Harmanpreet Kaur chipped in with 42 off 22 balls. Chasing the target of 165 runs, Delhi lost wickets at regular intervals but managed to get past the score with the help of Shefali Verma's quick-fire 43 runs off 18 balls and Sarah Bryce's 21 from 10. Gujarat Giants women will take on UP Warriors women at the Kautambi Stadium in Vadodara this evening. The match will begin at 7:30 p.m. And let's go to hockey now. Some hockey news. In hockey, the Indian women's team secured a hard-fought 3-2 victory over England in the opening match of the FIH Pro League campaign at Kalinga Stadium in Bhubaneswar last evening. Vaishnavi Phalke gave India an early lead in the 6th minute. However, England's Darcy Byrne equalised in the 12th. Deepika put India ahead again in the 25th minute, only for Fiona Crackles to level the score in the 58th. In a dramatic finish, Navneet Kaur secured the win for India with a decisive goal in the final minute. The Indian women's team will face England again today at 5:15 p.m. at the same venue.
Ab khabrein Mahakumbh ki. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में आज प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय स्कीमर को महोत्सव के शुभंकर के रूप में चुना गया है, जो कि आस्था और संरक्षण के संगम का प्रतीक है।
उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे पाए जाते हैं और राज्य में इनकी अनुमानित संख्या लगभग 1000 है। भारतीय स्कीमर अपनी आकर्षक नारंगी चोंच और काले सफेद पंखों के लिए जाने जाते हैं और ये नदियों, झीलों और मुहाने के किनारे दलदली क्षेत्रों में पनपता है। यह पक्षी नदी के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ में ये कार्यक्रम आयोजित कर आस्था और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल के नोडल अधिकारी ललित वर्मा ने कहा है कि भारतीय स्कीमर को इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों के साथ बर्ड फेस्टिवल का यह संस्करण खास होगा। महाकुंभ में आज कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक जलवायु सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसमें धार्मिक नेता, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार जगत के नेता और अन्य गणमान्य भाग लेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
अब रुख करते हैं महानगरों के समाचार का।
Yes, Manoj, we are starting with the news from Chennai. The Madras High Court has said that a prisoner is also entitled to basic human rights and providing education is a basic right to live with dignity. A division bench of Justice S.M. Subramaniam and Justice M. Jyoti Raman made the observation on a plea seeking direction to the Pural prison authorities to remove one of the prisoners from solitary confinement and to provide basic facilities. The Tamil Nadu government has officially taken possession of assets seized from late Chief Minister J. Jayalalitha in the long-running disproportionate assets case. These include a 27 kilogram and 558 grams of gold jewellery, 1,116 kilogram of silver, and documents related to 1,526 acres of land previously stored in the Karnataka Vidhana Sabha treasury. The transfer took place on Friday, following a Bengaluru court's order for Karnataka to hand over the valuables. Bengaluru News Now. The Railway Minister, Ashwini Vaishnav, has assured rail connectivity to the Kempegowda International Airport in Bengaluru, along with metro and road connectivity. Addressing the media in the city, he said that a rail over bridge will provide a rail link to the airport. The railway link will help air travellers to reach the airport within 45 minutes. On decongesting the Bengaluru city, the minister said that suburban rail link and a proposed circular rail link will help improve seamless commutation. Railway Minister Ashwini Vaishnav reviewed the ongoing and proposed railway projects in Bengaluru, and several important railway projects, including the procurement of rolling stocks for suburban rail, the doubling of the Bayyanappanahalli, Hosur and Yeshwantpur Channasandra sections, came up for discussion. The progress of Bengaluru Metro rail projects and the proposed Hubballi-Ankola railway line and the performance of the rail wheel factory in Bengaluru was discussed with the officials. He noted with appreciation the design of CRIDE for the suburban railway project that helped eliminate 6-level crossing gates between Hebbal and Banaswadi. This was possible by raising the railway track through the road under bridge at these locations. The minister reviewed the proposed redevelopment of KSR Bengaluru station that is set to significantly improve infrastructure and commuter facilities. Hyderabad News Now. Nalsar University of Law has launched the Milan K. Banerjee Arbitration Centre, MKBAC, on the university campus in Hyderabad. The centre has been established through an endowment by senior advocate Gaurav Banerjee and is named in honour of the late Milan K. Banerjee, an esteemed jurist who served as the Attorney General of India for 2 terms. Delivering a keynote address, former Supreme Court Judge and MKBAC Chair Justice Rohinton Fali Nariman discussed Banerjee's contributions towards the field of arbitration. Telangana High Court Judge Justice Moshimi Bhattacharya praised the skills and contributions of Banerjee that she had witnessed on a personal level. Nalsar University of Law Vice Chancellor Professor Sri Krishna Deva Rao said the centre aims to foster collaboration among students, legal scholars, practitioners and policy makers, providing a platform for academic discourse and professional development. And Manoj, over to you now for rest of the news.
Ji, Subhadra. Pehle Delhi ki khabar. Haryana ke Faridabad mein aayojit 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में शनिवार को अवकाश वाले दिन देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वर्ष मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित कई देश भी मेले में भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पाद और हथकरघा को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित इस मेले के लिए आगंतुक टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों तथा दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली की एक और खबर, राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के शीतकालीन संस्करण में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच ट्यूलिप और अन्य प्रजातियों के 140 प्रकार के गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के 80 से ज्यादा प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं। अब मुंबई महाराष्ट्र समाचार। कोंकण के लोगों से मिले भारी समर्थन को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि उनके भारी जनादेश के साथ इस क्षेत्र की सेवा करने और इसके उत्थान की बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। वे शनिवार को रत्नागिरी के चंपक मैदान में आयोजित धन्यवाद सभा में बोल रहे थे, जहां उन्होंने शिवसेना नेताओं को विधायक चुनने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिवसेना के उपनेता उदय सामंत, राज्य मंत्री योगेश कदम, विधायक किरण सामंत, विधायक नीलेश राणे, वरिष्ठ नेता रामदास कदम, पूर्व विधायक रजन सालवी और कई अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर श्री सामंत ने विश्वास जताया कि शिवसेना आगामी जिला परिषद चुनावों में भगवा झंडा फहराएगी, जिससे क्षेत्र के प्रति पार्टी की ताकत और प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी। अब कोलकाता समाचार। कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI में शनिवार को तीसरे बंगाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF का उद्घाटन हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और बांग्ला आवार ने संयुक्त रूप से इस फेस्टिवल का आयोजन किया है। ये फेस्टिवल 18 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान फिल्में, लघु फिल्में, लाइव कंसर्ट, पैनल चर्चा आदि का आयोजन किया जाएगा। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं।
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई विल बी सीन लेटर ऑन। दिल्ली मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 16 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 18 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू गो अहेड विद दिल्ली वेदर।
दिल्ली में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा तथा बाद में आसमान साफ हो जाने का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 16 फरवरी है।
Yes, 1883, the very famous Ladies Magazine, Ladies Home Journal, began publication in Philadelphia, United States of America. And in 1923, archaeologist Howard Carter unsealed the burial chamber of Pharaoh Tutankhamun on this day. And of course, the discovery remains one of the most famous archaeological finds in history.
1914 में आज ही के दिन लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहले विमान ने उड़ान भरी।
एंड ऑन दिस डे इन 1926 फिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट एच गॉडार्ड लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट इन ऑबर्न मैसाचुसेट्स। एंड इन 1927 रेल सर्विस स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। And 1937 this day, DuPont patents a new thread called the nylon, which will replace silk in a number of products and reduce costs.
1969 में आज ही के दिन मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया।
And 1959 this day, after defeating the forces of dictator General Fulgencio Batista, Fidel Castro became premier of Cuba this day in 1959 and transformed the island country into the Western Hemisphere's first communist state.
1982 में आज ही के दिन कोलकाता में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
And this day in 1968, Elvis Presley gospel album How Great Thou Art is awarded a gold record. Of course, it would go on to win a Grammy later on for best sacred performance, and by 2010, it was certified triple platinum.
1987 में आज ही के दिन पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और 2003 में आज ही के दिन विश्व की पहली क्लोन भेड़ डोली को दया मृत्यु दी गई। 2004 में आज ही के दिन इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच वार्ता शुरू हुई।
In 1980, the first visible total solar eclipse of the 20th century was seen. This succeeded the total solar eclipse after 22nd June 1898. And in 1999, this day marked the debut of the euro currency in the form of physical bank notes and coins. And 2005, my dear friends, the Kyoto Protocol, an international treaty aimed at reducing the emission of gases that contribute to global warming, went into effect. And 2019, this day, Vande Bharat भारत एक्सप्रेस India's very first high-speed train successfully completed its first commercial journey from New Delhi to Varanasi this day. This happened in the year 2019.
आज ही के दिन 2008 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया. 2008 में आज ही के दिन टाटा मोटर्स ने सेना के लिए लाइट स्पेशलिटी व्हीकल नाम से एक वाहन उतारा. आज ही के दिन 2008 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया. 2009 में आज ही के दिन कार्यवाहक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-2010 का अंतरिम बजट पेश किया. 2010 में आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि कैलाश वाजपेयी, मैथिली के दिवंगत कथाकार मनमोहन झा तथा अंग्रेजी के लेखक बद्रीनाथ चतुर्वेदी सहित 23 लोगों को वर्ष 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. गुजराती के लेखक शिरीष जे पंचाल ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया. राज्यसभा सांसद एवं प्रसिद्ध हिंदी अनुवादक वाई लक्ष्मी प्रसाद को तेलुगु साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया. 2010 में आज ही के दिन शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वरिष्ठ फिल्म अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू और नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति तथा कर्नाटक संगीत के 3 प्रसिद्ध व्यक्तियों सहित कुल 6 व्यक्तियों को उनके संगीत, नाटक और नृत्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलो प्रदान करने की घोषणा की गई.
And Manoj, moving on to some important births and deaths of the day. Tribute to the father of Indian cinema, Dadasaheb Phalke, one of the eminent directors and screenwriters in the history. Of course, in his career of 19 years, he made about 95 full-length movies and 26 short movies. And as a child, Phalke displayed great interest in the creative arts. Determined to pursue his dreams, he joined the Sir J.G. School of Art, Bombay in 1885. While there, he pursued a variety of interests, including photography, lithography, architecture, amateur dramatics, and he became adept even at magic. He briefly worked as a painter, a theatrical set designer, and a photographer. In 1969, the Government of India, in honor of the great director and screenwriter, started the Dadasaheb Phalke Award, which is given to a showbiz for lifetime contribution to cinema. And of course, this award remains one of the revered awards for the film fraternity in India.
भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में अपनी पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र दर्शकों को दिखाई थी. 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में बनाई. दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन 1932 थी, जिसे बाद में डब करके आवाज दी गई. उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था. दादा साहब ने जो एकमात्र बोलती फिल्म बनाई उसका नाम गंगा वतरण है.
And friends, the first Indian to achieve the coveted title of senior wrangler at the University of Cambridge and became a university administrator and Indian ambassador, followed by many more coveted positions in India and abroad, at Sir Raghunath Purushottam Paranjpe, who took birth this day in 1876. He always scored first place in university exams in India, but also topped the mathematical tripos exams at the University of Cambridge, after which he became the first Indian to receive the honor of senior wrangler. He also wrote about his life and work in his autobiography 84 Not Out, which was published in 1961. In his memory, a road in Pune was named Wrangler Paranjpe Road. And also astrophysicist Meghnad Saha passed away this day in 1956. He developed the Saha ionization equation used to describe chemical and physical condition in stars. And of course, his work allowed astronomers to accurately relate the spectral classes of stars to their actual temperatures.
आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी की. उनका जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था. उनका वास्तविक नाम अलोकेश लाहिड़ी था. सोने के गहनों से लदे बप्पी लाहिड़ी के संगीत में अगर डिस्को की चमक दमक नजर आती थी तो उनके कुछ गाने सादगी और गंभीरता से परिपूर्ण भी हैं. बप्पीदा के नाम से मशहूर बप्पी लाहिड़ी ने सन 1970 से 1990 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन डिस्को गीत दिए. बप्पी लाहिड़ी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई थी कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए थे.
तुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सुना जग सारा है, दिल से दिल मिल गया, मैं तेरी हो गई तू मेरा हो जा, मैं तेरी हो गई।
I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना, तो झूमो को नाचो और मेरे साथ नाचो, go! I am a disco dancer.
And friends, remembering Machito, Latin jazz musician born this day in 1912, he popularized Cuban musical culture throughout the United States and the world. He helped infuse Latin music into mainstream American music, making a name for himself as a father of Latin jazz, influencing generations of musicians that followed. Jazz greats George Shearing, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Stan Kenton credited Machito as an influence. An intersection of East Harlem and New York is named Machito Square in his honor. Birth anniversary of James Ingram, soulful R&B singer, a two-time Grammy winner, 14-time nominee, was recorded some soul-stirring songs, both solo and several duets. Ingram also co-wrote PYT, Pretty Young Thing, the sixth single from Michael Jackson's albums. Sadly, he passed away at the age of 66 in 2019.
Somewhere out there, someone singing a prayer that we'll find one another in that big somewhere out there. And even though I know how very far apart we are,
आज जन्म दिवस है जाने माने भारतीय हिंदी लेखक, आलोचक, कवि तथा गद्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी का। उनका जन्म 16 फरवरी 1931 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके श्रेय में लगभग 20 प्रकाशन है, जिनमें साहित्यिक आलोचना संस्मरण और कविता संग्रह शामिल हैं। प्रगतिशील विचारधारा से संबद्ध कट्टरता रहित आलोचक के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने मुख्यतः मध्यकालीन साहित्य से लेकर समकालीन साहित्य तक की आलोचना में गहरी अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। जीवनी एवं संस्मरण लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी की भाषा एवं साहित्य दोनों के गंभीर अनुसंधिस्तु रहे हैं। उनकी पहली पुस्तक हिंदी आलोचना आज भी अपनी मौलिकता, प्रांजलता, ईमानदार अभिव्यक्ति तथा सटीक एवं व्यापक विश्लेषण के कारण अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। वर्ष 2014 में उन्हें उनकी रचना व्योमकेश दरवेश के लिए उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
New wave rock band Duran Duran's guitarist founder, member Andy Taylor celebrates his birthday today. Alongside Duran Duran, Andy also co-wrote songs for other musicians like Robert Palmer, Rod Stewart, The Almighty, Thunder, Love and Money, Moksha and many more. Happy birthday to Andy. Tennis legend John McEnroe turns a year older today. He first attracted international attention as an amateur in 1977. At the age of 18, he became the youngest man to reach the Wimbledon semifinals. And of course, he was also inducted into the International Tennis Hall of Fame in 1999.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन, फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।